तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महापदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तिषे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये हा देवी काकू भर गद गदयाद्य वाच जाचे निपत्त भूवि दंडवत उद्भटारति अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य हित्वा गंधर्विके तव गणे गणनं विधेहि अंग श्यामलिनी छटाभिरभितो मंदी कृतेंदी वरम जद्दंजा गुडरोच संगविदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशितो जगभुजं ध्यायेम धाम भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्यै क्षेपास्य कामादि तरंग मध्ये कृतामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्रया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय मां चरणन्तिके यत्किंकरीशुभौषा खलुकाकवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले जस्याकदारस्निधे विशुभानुजाया तत्केलिकुञ्जभवनं गणमर्जनीष्यामि दशमस्कन्ध श्रीमद्भागवतम् पूर्वार्ध दशम सैंतालीसवां अध्याय श्रीमती राधिका जी महाभाव अवस्था में है। कृष्ण विरह के में दिव्य उन्माद में उन्माद नहीं दिव्य उन्माद और उसमें चित्र जल्प सुदीप्त अष्टसात्विक विकार इत्यादि और उसमें चित्र जल्प इत्यादि वो कारण विचार करके नहीं कह रही। कृष्ण विरह में उनके प्राण कंठ तक आ गए हैं, अब मरी ऐसी स्थिति हो गई। उद्धव जी पीछे की तरफ में खड़े हैं, श्रीमती जी नहीं देख रहे, किंतु वो जो कर रहे हैं उद्धव जी सुन रहे हैं, वो सबको सुन रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं, सुनते सुनते विचार कर रहे हैं। उन्होंने देखा जी राधिका जी तो अब मरी, प्राण उस मैंने कंठ तक आ गया। राधिका जी करने सखी खूब क्षीण स्वर में कह रहे, सखी ये कोयल की काकली को बंद करो, कोयल कुहक रही है, वृंदावन है ना, इसलिए कोयल कुहक रही है। कोयल का बोलना बंद करो। कभी कोयल की बोली बहुत पसंद करती थी मिलन में, अब विरह की ऐसी दिव्य उन्माद में हो गई मानो कोटि कोटि चिताएं एक साथ में जला दी गई हैं। कोयल की बोली ऐसे उनको लग रही है, 20 से भी अधिक। चांदनी छिटक रही है, सखी ये मेरे हृदय में सूल की तरह लग रही, इसको ढक दो, चांदनी हमारे निकट नहीं आने वाली। क्यों ऐसा हो रहा है? अष्टसात्विक विकार अपने अंतिम सीमा में है। अष्टसात्विक विकार सुदीप्त प्रज्वलित स्थिति में है, अत्यंत उन्नत। ऐसा कभी देखा नहीं गया, उद्धव ने कभी आज तक ऐसा देखा नहीं। जब उन्होंने ऐसे श्रीमती राधिका जी को देखा, विचार करें क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो विरह में बचना बड़ा भारी कठिन है, गोपियों का विरह, उनको योग माया दो प्रकार से रक्षा करती है, नहीं तो मरी जाती है। एक मूर्छा बीच में ला देती है कभी कभी, इसलिए जैसे कि एक आदमी रोगी को बहुत बेचैनी है, अब मरा मरा, तो मूर्छा होने का इंजेक्शन लगा देते हैं, क्लोरोफॉर्म इत्यादि दे देते हैं, जिससे कि वह दुख की अनुभूति न है, चुपचाप पड़ा रहे, तो ये मूर्छा वो करा देती है योग में। और एक क्या राधा जी दिव्य उन्माद में है, अत्यंत तीव्र विरह और उसमें हो गया मान, विरह में मान नहीं होता कभी, संभव नहीं, उस समय में दाक्षिण्य भाव आ जाता है, उसमें विनय नम्रता रोना ये भाव आएगा। आज श्रीमती राधिका जी दिव्य उन्माद में परम विरहणी होकर आज उनको माना, और मान में वो दुख भूल गई, ये मान नहीं रहता तो शायद मर जाती, इसलिए उनको मान। ये सब बातें ज्ञानियों के लिए कोटि जन्म में संभव पर नहीं है। जिस उद्धव के ज्ञान को गोपियों ने गुदड़ी बनाकर फेंक दिया, आज बाहर के लोग ब्रज से आकर के वही सब चीजों की दुकान लगाते हैं, और दुर्भाग्य लोग उस दुकान में जाते हैं। क्या मतलब? ये जो ज्ञान है ना, अहम ब्रह्मास्मि, संसार से निर्लिप्त रहो, ये सब जो ज्ञान है, शरीर कुछ नहीं, बस एक ब्रह्म है, ऐसा द्वेष इत्यादि ये सब मत करो, किंतु साथ ही साथ में किसी चीज का अनुराग न रहे, परमात्मा के प्रति भगवान के प्रति अनुराग भी यदि रहेगा तो एक दिन दुख देगा, इसलिए दोनों चीजों को स्तब्ध कर दो। ये निर्विशेषवादियों का विचार, जिसको गुदड़ी करके फेंक दिया, जमुना में गया और जमुना से त्रिवेणी पार करते हुए गंगा के माध्यम से सागरों में गल गया। और वही चीजें कभी कभी आते हैं यहाँ के लोग जो नहीं जानते हैं, अरे बाबा इतनी सुंदर चीज, और इन चीजों में रुचि नहीं। ब्रज का तो ये भाव है ना, ब्रज में यदि रह करके इन भावों की उपलब्धि नहीं हुआ, रसास्वाद नहीं हुआ, तो उनका ब्रज में जन्म लेना ही बेकार का व्यर्थ है। उद्धव जी जैसे लोग समझ रहे हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ गया, तो साधारण लोगों की तो बात क्या है। इसलिए जोग माया प्राण की रक्षा कर रही है गोपियों की, विशेष करके राधा जी की। कैसे? उस तीव्र विरह में जहां मरने को आया उनको राग हो गया, उनको मान हो गया। मान कैसे हुआ? ध्यायन्तिम कृष्ण संगमम, कृष्ण संगम का कैसे ध्यान किया, राधिका जी देख रही हैं, भाव नेत्र से स्फूर्ति हो रही है। क्या स्फूर्ति हो रही है? किसी मथुरा में वहां की किशोरी से प्रणय किया और उसके साथ में विलास कर रहे हैं, ये ध्यान में स्फूर्ति हुई। और उसके आलिंगन से, उसके स्पर्श से उनकी माला में उनका कुंकुम लग गया, ये ध्यान कर रही देख करके इनकी विचित्र स्थिति हुई। कहां है ये? अभिसार में है, सज्जा बना लिया, नहीं आए समय पर, क्यों विलंब हो रहा, चिंता कर रही है क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए कृष्ण, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। वासक सज्जा हुई, वासक सज्जा से फिर क्या हुई? खंडिता हो गई। खंडिता माने नहीं आए समय पर, समय के बाद में भी प्रलब्धा हुई और देखा जी कृष्ण आए, अंगों में कुमकुम काजल लगाए हुए, देखकर के रोष हुआ, मान हुआ। हम लोग सोचेंगे ये तो भीतर में एक कल्पना है, उनको स्तुति नहीं, साक्षात से भी अधिक वो देख रही है, साक्षात मानो देख रहे। और वो भला कम माने, बस उनको दो चार उल्टी सीधी सुनाई, कृष्ण ने अन्न विनय किया, नहीं सुनी तो कृष्ण चले गए। कहां चले गए? लौट गए। अब ये हो गई क्या? अभी प्रलब्धा नहीं, कलहंतारिता, कलह किया और वो चले गए, अंतर हो गया ना, चले गए। जब वो चले गए अब दुख से तफाने लगे, बिरह से, हा है मैंने ये क्या किया, उनसे झगड़ा क्यों किया, अब मिलेंगे तो अब झगड़ा नहीं करूंगी, मान नहीं करूंगी। और इतने में वो भ्रमर आया और उनके पैरों को कमल समझ करके गुंजार करते हुए उसमें प्रविष्ट होकर के मधुपान करना चाहा। और ठीक उसी समय में भनभन कर रहा है, उद्धव जी प्रवेश किए हैं, निकट जा रहे थे, इतने में उन्होंने सुना, अरे मधु पितव बंधो मांस पिसांगुरी, हमारे चौनों को मत छू, निकल जाए यहां से, अपवित्र बन करके मधु का पान करते हुए तू यहां आ गया कैसे, एक बार से कहने लगी। देखो कहां मरने जा रही है, जोगमाया की ऐसी क्रिया हुई, मादन की अवस्था वहां पर उपस्थित हुई, विरह में, ये कभी संभव नहीं, जो असंभव उसको भी संभव कर दिया इस मादन। मादन केवल मिलन में होता है, विरह में नहीं होकर आज एक तो अद्भुत तरंग उस महासागर में, राधिका जी के प्रेम के सागर में एक ऐसा मान उपस्थित हुआ जो दीप बन गया, जिस पर राधा जी खड़ी होकर के डूबने से समुद्र में बच गई। क्या समझ में आया? यदि वो दीप नहीं होता तो महासागर में डूब जाती, किंतु जोग माया ने मान रूपी एक भूखंड को समुद्र से निकाल दिया, जिस पर राधा जी टिक गई, खड़ी हो गई और वो बच गई, नहीं तो मर जाती। ये जोग माया की प्रक्रिया है, इसलिए कह रही है मधु फिर वो बंद हो, ये पृष्ठभूमि उसकी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कह रहे हैं मास पिसांगरी प्रमर उनके निकट में आ रहा है, अरे मधु, इसकी तो व्याख्या साधारण उतने की थी, मधु मधुपान करने वाला, भौरा भी है और जो मधुपान करते हैं वो भी हो सकते हैं, मधुसूदन और मधु दोनों एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, मधुसूदन मधु को आस्वादन करा, मधु पालन करने वाला। उन्होंने कहा जी ये तुमको कहां से आया बतलाओ तो, तुम जरूर मद्यप है, मत छुओ पैर, और पैर छूने से मैं पवित्र हो जाऊंगी, जानता है तू? तू नहीं जानेगा, तू जानेगा कहां से? तुम तो पीछे मित्र हुआ, हम जानते हैं। अरे तुम्हारे स्वामी हजारों बारों पवित्र हुए और हमारे चरणों को स्पर्श करके तब पवित्र बने हैं, जानता है इस चीज को? तो स्वामी मैं भी यदि मैंने दोष किया है आपके चरणों को स्पर्श कर पवित्र हो जाऊं? नहीं नहीं, मत छुओ। मांस पिसांगरी मत छुओ। देखो कितव बंधो, कितव बंधो किसको कहते हैं? कपट का बंधु, ठग का बंधु। एक ठग है, उसका मित्र कौन होगा?
ठगी होगा।
वो होगा जो इसको भी ठग दे तो उससे मित्रता हो जाएगी। अपनी चातुर्यता से सरल सीधा बनकर, ठग है किंतु सरल सीधा बन करके, अपनी मीठी मीठी बातों से जो उस ठग को भी ठग देता है वो कितव बंधु। तो ये तुम उस कितव का बंधु है। स्वामी जी यदि वो ठग है कहते हैं, ऐसा मत कहिए, ये बात तो ठीक नहीं जमती, मत कहिए। उन्होंने कभी किसी के साथ में ठग नहीं किया। यदि आपके प्रति प्रीति नहीं होती तो हमें क्यों भेजते? प्रीति है इसलिए आपको मनाने के लिए हमको भेजा, इसलिए आप उसमें दोष देख रही हैं। उनमें वो तो परम निर्मल है, साधु स्वभाव है, और उनका प्रेम भी आपके प्रति साधु है, जैसा आप लोगों का है उनका भी ऐसा ही। अब वो राधिका जी को क्रोध हो गया, बार बार कहते हैं तू चला जा, नहीं जाता है और अपनी साधुत्व दिखलाता है, इसीलिए कहते हैं कि देख तू एक तो मत पान किया तो जमुना में स्नान करके क्यों नहीं आया? तो स्वामी जी मैं तो स्नान करके ही आया। अच्छा तो स्नान करके आया तो तुम्हारे गुल्फ में ये कुमकुम कहां से लग गया बतला? स्वामी जी मैं तो सौभाग्य कृति से फूलों का रस पान करता हूं, और फूलों में जो भीतर में वो रहता है पराग, वो पराग मेरे गुल्फ में लग गया उसका पान करने से, मैं मधुपान नहीं किया। तो अच्छा मैंने होता है ऐसा, पराग लग गया और भौरों का कुछ गोफ भी होता है कुछ पीले पड़ गया स्वाभाविक रीति से, और उधर में पराग लग गया पीला। राधिका जी को मान हुआ, मान त्याग करने का, मान को उपशम करने का ये तरीका है जिससे कि क्रोध मेरा बढ़ जाए। तुम हमारे क्रोध को भड़काने के लिए आया ना हमको, और शांत करने के लिए आया, तो चला जा। उद्धव जी ने सोचा ये प्रभु पर, हमारे प्रभु के ऊपर में लांछन लगा रही है, नहीं समझ सके इतने गहरे भावों को है? ये राधिका जी स्वामी जी इनको संतोष देने के लिए भेजा है, और ये अनर्गल उनके ऊपर में लांछना लगा रहे हैं, उनको ठग कर रही हैं, कितव कह रही हैं, अपवित्र कह रही हैं, ये तो उचित नहीं। उद्धव जी की इच्छा हुई मैं थोड़ा सा चल करके उनके पैरों को छू करके और कुछ निवेदन करूं। उद्धव जी जहां उठे हैं इतने में राधिका जी उसको फिर से कह रही हैं, मांस पिसांगरीस मत छू, तो दूर चला जा। उद्धव जी जहां के तहां फिर कुछ नहीं सके, बैठ गए। अच्छा ये बतला तू सच सच बतला, कहां से कुमकुम लाया? जब वो बन बन करता रहा था, अच्छा तुम सफाई देता है, ये कुमकुम हम बतला रहे हैं उनकी जो प्रिया जी वहां है, हमने देखा, मैंने तो देखा उन्हीं का कुमकुम तुम उनके माला में लगा, वो पर तू बैठ गया और वो तुम्हारी कुमकुम को लेकर के आया, किसी हम लोग को क्रोध नहीं होगा। मैं उनको आज नहीं जन्म से जानती हूं और हमको भी वो जन्म से जानते हैं। बहुत मधुपति तन्मान नीनंक साधम। तो हमारे पास क्यों आया? कुछ पुरस्कार के लिए है? अरे पुरस्कार की जरूरत है तो यहां नहीं मिलेगी। तुम पुरस्कार चले जाओ मथुरा में, वहां पर तुम माननीयों को मनाना और वो मान करके जब मान जाएंगी प्रसन्न कर देंगी उनकी चाटुकारी वचनों से तो तुम्हें बहुत सा इनाम दे देंगी। फिर एक रुष्ट हो जाएगी, फिर तुम जाना मनाना और फिर वो भी संतुष्ट होकर के तुमको दे देंगे। जीवन भर बनाता रहेगा वहां पर अनंत उनकी प्रेयसियां है। यहाँ पर हम लोगों के पास में काना कौड़ी नहीं, हमको घर बेघर का करके कहीं का नहीं रखा उन्होंने, इसलिए वहीं पर चले जाओ। एक बात कहूं, कैसे कहिए स्वामिनी जी, तो ये जदू जस दूतस तमेद्रित, तुम बुद्धि और अकल कम है, बहुत कम है। हमारे समझ से तुम्हारे जो प्रभु हैं जिनका तुम दूत होकर के आया है, कहीं जदुओं की सभा में उनकी यह बातें कहीं प्रकट न हो जाए। क्या हमारे प्रभु की बातें याद प्रकट हो जाएंगी? यही बातें जो तुम जिस चीज को लेकर के कुमकुम आए हो, ये तो उन्हीं की माला की है ना। जब जदुओं की भरी सभा में बैठेंगे और जदु लोग देखेंगे ये कहां से आया, शादी फादी तो हुई नहीं अभी तक, कहां से आई ये सभी, उस समय में तुम्हारे प्रभु की ये विडंबना करेंगे। विडंबना माने करें अपमान करेंगे, वो अपमान करेंगे, ज्ञान नहीं है। तो तुम्हारे प्रभु जैसे वो है एक शेर और तुम क्या है, सवा शेर है, तुम्हारी भी वैसे ही निर्बुद्धिता है। इसलिए हमारे पैरों को मत छू, अभी तू लौट जा और मथुरा में तुम चला जा, उन माननीयों को तुम बना, यहां पर मत रहा। इसको कहते हैं प्रजल्प, दिव्य उन्माद में होता है। कुछ मान हो गया, क्रोधित हो गया, वो विरह की अत्यंत उन्माद दशा में ये यदि मान नहीं होता या मूर्छा नहीं होती तो वो मर जाती। इसलिए जोग माया इनकी रक्षा कर रही है ऐसे चीजों के द्वारा, और एक नया इतिहास प्रेम का इतिहास रचा जा रहा है जो आज तक कहीं विश्व में नहीं देखा गया। त्रेता युग में, सतयुग में या और द्वापर के प्रारंभ में जो आज प्रेम यहां देखा जाता है, उद्धव जी देख करके स्तंभित हो गए। यह इसको प्रजल्प किस लिए कहा, इसी को ये बतला रहे हैं। यहां पर प्रेम की अधिकता से यदि प्रियतम को कोई माननी असूया कर रही, असूया माने क्या, असूया गुण में दोष की गुण को देखना, इसको कहते हैं असूया। कृष्ण के गुणों को ही दोष देख रही हो और प्रेम के पात्र को ईर्ष्या कर रही है, ईर्ष्या माने क्या, देखकर के क्रोध से जल उठना और गर्व वहां पर उपस्थित हो जाए, गर्व वहां पर हो जाए, अभिमान हो जाए और अपने प्रियतम को अनादर करे। ऊपर से किंतु हो रहा है ये सब, अनादर करे जिसको उद्धव जी जैसे लोग ना समझ सके, उस अनादर को, अनादर है कि आदर है, और उनकी चतुरता को भी अविवेकपूर्ण बतलाती है। माने क्या, कृष्ण की जो चतुरता है, कौशल है, उनको समझते कि निर्बोध है, कुछ नहीं जानते, तब उस भाषा को, इनकी उस बातों को प्रजल्प कहते हैं। प्रकृष्ट रूपेण जल्प इति प्रजल्प। अब ये कैसे हुआ? दूत को देख करके, भ्रमर को देख करके, उद्धव को नहीं। उद्धव सुन रहे हैं सब कान लगा करके, किंतु सामने नहीं है, और राधा जी उनको नहीं देख रहे हैं, किंतु ठीक ये सब बातें उन्हीं पर घटित होती हैं। उद्धव कहे हम ही को देख करके कह रहे, किंतु उद्धव को वो देख नहीं गई। किताब बंधो कृष्ण को ठग, आज तक किसने कहा? किसी ब्रह्मवादी ने कहा वेद में उनको ठग कहा? यशोदा भी कहती है कुछ चोर और कह देंगे, किंतु ठग नहीं कहेंगे। आज गोपियां उनको ठग कह रही हैं, ये है असूया। और मधुपति, मधु माने मद्यपान करने वालों का राजा, ये भी है असूया। गुण में दोष देख रहे वहां पर, मधु माने प्रेम का, मधु आस्वादन करते हैं इसलिए मधुसूदन, उसमें लगा दिया मद्य लगा दिया। और ईर्ष्या कैसे हुई? सपत्ना कुछ कुछ बिलोली तमाला, ओ सपत्नियों का, उनका अंग का संग करके और उनकी कुंकुम को तुम धारण करके आया है, सपत्नी का भाव जब उठा है, सपत्नी का भाव होने से ही ईर्ष्या आ गई, इसलिए उस समय में उनको ईर्ष्या भी आ गई। किंतु सब समझना, प्राकृत भाव जगत का कोई भाव नहीं, जहां पर ज्ञान की परिसमाप्ति हो जाती है, जहां विज्ञान अपनी अंतिम स्थिति में पहुंच जाता है, जहां पर प्रेम महाभाव से भी ऊपर उठ जाता है, तब की ये बातें हैं। ज्ञानी लोग कोटि जन्मों में इन चीजों को नहीं समझ सकते हैं। ये वृंदावन की विशेष कृपा हो, उन कुंजों की कृपा हो, गिरिराज और जमुना जी की कृपा हो, श्रीमती राधिका जी की या कृष्ण की हाथ की कृपा हो, तो इन चीजों को समझ सकते हैं कुछ कुछ। साधारण अवस्था में कुछ कुछ झलक हो सकता है, वो भी होगा भाव अवस्था में। मांस अंग्री मांस प्रिशा, हमारे चरणों का मच्छू, यहां क्या हुआ? गर्व और अभिमान, मच्छू दो हट जा। बहुस्ती बह तो मधुपति तन्मानिनी नंग प्रसादम, ये क्या है करें? कृष्ण उनका मान छुड़ाए, ये कामी पुरुष के रूप में लिया है, नहीं वहां तो इस रूप में अवधीरणम, उनको अनादर कर रही है। जदु सदसी विडम्बनम जस्तु तस्तमेत, जदु आपकी सभा में विडम्बना होगी, क्यों? कुशल नहीं है व्यवहार, कुशल नहीं है, समझ नहीं है, कृष्ण को अनादर करेंगे, कृष्ण को भी बुद्धि नहीं है, अविवेकी है इत्यादि इत्यादि ना, अकौशल, कृष्ण को विवेक कम है इत्यादि, ये सब चीजों को कहते हैं प्रजल्प। एक साथ में हो करके ईर्ष्या मान गर्भ असूया ये सब एक साथ में मिलकर के कृष्ण का अनादर करते हैं तरह तरह के वचनों से, तब उसको कहते हैं प्रजल्प। ये राधिका जी की दिव्य उन्माद में, विशेष करके मादना अवस्था में, अत्यंत विरह में भी मिलन हो, मिलन में विरह और उसमें फिर मिलन, इसकी कल्पना करना साधारण लोगों के लिए सहज नहीं है। सकिता धर सुधांसां मोहिनी पाययित्वा सुमन सैव सद्य तत्तजेस्मान भवद्रित परिचरति कथम तत्पाद पद्मम्नुपद्म्यापिवत हित चेता उत्तम श्लोक जल्पई। भाव बड़े गंभीर है, संसार के ये भाव नहीं, ये सब अप्राकृत भाव है, समझना बड़ा भारी कठिन है संसारिक ये भावनाओं को लेकर के। तो भी नहीं कहने से द्वेक भी अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी सुना रहे हैं, हमारे सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी सुना रहे हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ ले। यदि कहीं हृदय में कड़ी सा लोभ उत्पन्न हो गया तो जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। इसलिए जानते हैं इसके अधिकारी नहीं है। तो भी सकल अधर सुधा सांग मोहनी पाए, फिर हमें व्याकुल हो गई और वो इधर हुआ मरता हुआ पुनः उनके चरणों में लिपटने लग गया। वो समझ रहा है कमल उसका सौरभ आस्वादन करने के लिए, मधु आस्वादन करने के लिए पुनः पुनः वही जा रहा है और भन भन कर रहा है। श्रीमती नारदिका जी भाव नेत्रों से देख करके उन्होंने कहा, देख रही हैं, मन मन करता है स्वामिनी जी आप ऐसा मत कहिए, वो तो परम साधु और परम सरल है, आप लोगों के प्रति उनका प्रेम जो है बहुत निर्मल है, आपके अतिरिक्त और किसी को वो नहीं जानते हैं, आप हमारी बातों पर विश्वास करें, नहीं तो हमको वो नहीं भेजते। वो परम साधु है। क्या कहा क्या कहा, परम साधु है, तू अभी दो दिन का जन्म नहीं हुआ और हमको शिक्षा देने आया। सकृत धर सुधां सांग मोहिनी पाई क्या सुमन सही व शब्द तप्त जे स्मान भवत्र। अरे मधु, अरे भौरा, देख हम ही केवल जानते हैं और कोई विश्व में नहीं जानता, हम ही केवल उनके स्वभाव से परिचित है और कोई नहीं परिचित है। देख एक बार जबरदस्ती अधर सुधांग स्वयं मोहिनी पायित्वा, जोर से अपना अधर रस हमको जोर से पिला दिया, तो इनमें उनका क्या दोष, आपने क्यों पिया, आपको तो नहीं पीना चाहिए, आपको पति प्रता है, आपको नहीं पीना चाहिए। तो वह कह रहे हैं पायित्वा, पायित्वा माने जबरदस्ती पान कराकर, तो आप लोग भाग जाते इधर उधर चली जाते, नहीं एक बार उनका मुखारविंद जो देख लेगा वो उसको पान करना ही पड़ेगा। उसमें ऐसी एक मोहिनी मोहिनी उस अधर सुधा में उनके मुखारविंद में ऐसा प्रेम छलकता है, मादकता छलकती है, एक बार देख लिया इतना उद्दीपन होगा बिना पान किए रह नहीं सकता। जबरदस्ती एक सकृत माने एक बार क्यों कहा, एक ही बार पान जीवन में किया और किससे चले गए, नहीं एक बार नहीं कितनी बार हुआ होगा, किंतु विस्मित हो रही है, प्रेम है ना, इसलिए प्रेम में मत होकर के भूल रही है सब कुछ और सोच रही है एक बात पायिता सुमनस ही वह। सुमनस माने दो होता है, सुमन माने, सुमनस माने होता है एक देवता और सुमनस माने होता है सु मन जिसका, सुंदर जिसका मन है, मधुर मन है, सरल मन है, स्वच्छंद निर्मल मन है जिसका, वो सुमनस इव दद्दजे स्मान भवाद्रिक, भवाद्रिक भवत आपके समान, तुम्हारे समान, तुम क्या करता है, जिस फूल पर एक बार बैठ गया कुसुम पर उसका मधु पान कर लिया, फिर उस पर तुम नहीं बैठेगा, नए नए फूल चाहिए, तो तुम तो पान करता है, वो क्या करते हैं, वो पान कराते हैं। हम जो है ना सुमनस है, उसके जैसा ठग नहीं है, जैसे सुमनस सुंदर फूल हो, सुगंधित फूल हो, उसमें मधु हो, तो भौरा उस पर बैठेगा, काम करके फिर दूसरी जगह उड़ जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा उसके पास। तो तुम तो वैसे हो, किंतु हम वैसे नहीं है सुमन की भांति। हम तो सरल सीधी विश्वास करने वाली हैं, सब पर विश्वास कर लेती हैं, और निर्बल हमारा मन है, जैसे फूलों का होता है। उन्होंने पान नहीं किया, उन्होंने क्या किया, जोर से पान करा दिया। क्यों? इसलिए पान कराया, तुम तो अपने जीवन रक्षा के लिए मधुपान करता है, और ये क्या करते हैं, ये तो अजर अमर है ना। हमारी पूर्णिमा जी ने कहा ये तो अजर अमर है, ये मरता नहीं। इनको, इनका एक अद्भुत स्वभाव है, लोगों को प्यार करते हैं, मधुपान कराते हैं, प्यार करते हैं, किस लिए, अमर बनने के लिए। अमर किस लिए? संसार में सुमन वाली ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं होगा हम लोगों जैसी। एक बार पान करा दिया तो अजर अमर हो जाएंगे, और इनको पुनः पुनः दुख कष्ट दे करके छटपटाएंगे, और हम दे करके आनंदित होंगे। इसलिए जैसे एक मछली, मछली को क्या करते हैं, जाल में बझाने के लिए उसके कांटों में केचुआ अथवा आटा लगा देते हैं और फेंक देते हैं जल में, और तब से वो खा लेती है, निश्चल है, उसको छल का छंद नहीं है। जो कोई हमको, हमारे साथ में दगा करेगा, ये उसको नहीं है। इसलिए जो ही आए तो खाने की चीज खा लिया, किंतु वो भीतर में जब गया तो धीरे धीरे जब खींचने लगा तो हृदय फटने लग गया। 10 बार 20 बार खिला जा करके, और वो जब छटपटाती है, पानी से बाहर आती है, तो देख करके मछली मारने वाला क्या करता, बहुत आज एक तगड़ी मछली हमारे जाल में फंसी, और जब छटपट करती है तो उसको मुंह लगता है, कोई दर्द होता है, उसको आनंद होता है, केवल बस मर जाती है। कृष्ण चाहते हैं कि मरे नहीं, किंतु दुख ऐसा ही हो, हम मर जाएंगे तो ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जिसको बार बार कष्ट दें। इसलिए हमको अजर अमर करने के लिए इन्होंने पायित्वा जो से पान करा दिया है, हम मर न सके। सद्यस्तत्तजे स्मान, पान करा करके छोड़ दिया और जीवन में नहीं कराया, इसीलिए जो हम मरे नहीं और हमको दुख देते रहे, इसीलिए जीवन भर हमें तड़पाते हैं, दुख देते हैं। परिचरति कथम तत्पाद पद्मम नु तत्पद्मा। स्वामी जी आप ऐसा ना कहें, परम साधु व्यक्ति को ऐसा लांछना लगाना, आप जैसे व्यक्ति के लिए जिनके हृदय में आपके प्रति इतनी श्रद्धा है, स्नेह है, और आप उनको इतना बुरा भला कह रहे हैं, ऐसा मत कहें। यदि ऐसी ही बात है तो इनके चरण कमलों को पद्मा जी, ऐसे ही सुंदर सुगंध वाली पद्मा जी, जिनके अंगों से सुगंध निकलती है पद्म की, पतिव्रता नारी कथम तत्पाद्म पद्मम, उनके पाद पद्मों का सेवन कैसे करती हैं, तो उनको छोड़ देती, उसी के लिए कहते हैं हेपी वतहत चेता उत्तम श्लोक जल पई। ओ हम लक्ष्मी जैसी दुर्बुद्धि नहीं है हमारे, वो बड़ी अज्ञ है, भोली भारी है, हम भोली भारी नहीं है, हम उनको बहुत दिनों से जानती हैं, जे वो कैसे हैं, बार बार वो कपटता हम लोगों से करते हैं, तब हम लोग समझते हैं जिसे ऐसे कपट हैं, इसलिए तुम्हारे कहने में हम नहीं आएंगे। लक्ष्मी भोली भारी है, इसलिए उनको एक दो बार अन्याय करके, विनय करके और उनको मना दिया तो वो मान गई, भूल गई बेचारी, हम भूलने वाले नहीं है। अभी वृत चेता, उनके तो चित्त को चुरा लिया, किंतु हमारा चित्त भी ऐसे चुराया था, किंतु बार बार होने से हमको शिक्षा मिल गई है, अब उनकी बातों में बहकने वाली नहीं है, उनसे अब हमारी संधि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उत्तम श्लोक जलपई, उत्तम श्लोक जलपई, उत्तम उत्तम श्लोकों से दूसरों का मन मधुर मधुर वाणियों से हरण कर लेते हैं। कैसे? स्मर कर लखंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। ओ उदारी, परम उदारी आप हैं, आपके चरणों में मैं अपना शीश सौंप देता हूं, मेरी बंसी रही यही आपके चरणों में रही, और मैं कान पकड़ता हूं आज से ऐसा कभी नहीं करूंगा। दोष स्वीकार कर लिए, जब दोष स्वीकार कर लिए तो उनका मान थोड़ा सा उपशम हो गया। ऐसे उत्तम उत्तम श्लोकों से, शब्दों से, जो अन्य विनय करने में परम निपुण है और उन्होंने ही तुमको कुछ सिखलाया है, इसलिए तू हमारे पास में आकर के ऐसी चापलूसी भरी बातें करता है। नहीं, हम निर्बोध नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, तुम लौट जाओ, हमारे पैरों को मत छू। इस प्रकार से बार बार ऐसा कर, ये क्या हुआ?
परिजल
पर में कृष्ण का साठ वर्णन करें, सठ पद्मा जी को भी लुप्त करने वाले, उनको ठगने वाले, और शब्द उसको त्याग कर दिया फूलों को, वैसे उन्होंने हम लोगों को त्याग कर दिया। इसमें निष्ठुरता निर्दयता कृष्ण की आ रही है, और भवाद्रिक इसमें तुम जैसा चंचल है वो भी चंचल है, उनकी स्थिरता नहीं है, और लक्ष्मी बड़ी सीधी सरल है, इसके द्वारा इनका और भी ठग का होना बतलाया, अकृतज्ञ बतलाया इनको। क्यों? हमें छोड़ करके चले गए, अकृतज्ञता है, प्रेम शून्य है, कृष्ण को प्रेम शून्य कह रही हूं। ऐसे जहां पर भाव व्यक्त हो उनको कहते हैं परिजल। उद्धव जी सुन करके मन ही मन विस्मित हो रहे, प्रभु के लिए एक साथ इतना अनादर, ठग और क्या क्या कहना, कृतज्ञ कराना, प्रेम शून्य कहना, ये तो आज ही मैंने सुना है। उद्धव जी नहीं समझ पा रहे, कोई दूसरी गोपी होती तो समझ जाए, ये प्रेम की गहराई के वजह से ये निकल रहा। उद्धव जी नहीं समझ सके, समझे कुछ दिनों के बाद में, जब पूरा इनका समाप्त हो गया, गोपियों ने इनको कुछ समझाया, तब कुछ समझा। आज यहीं तक रहे दो श्लोक, कल हम तीसरा श्लोक की व्याख्या करें। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो